ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। उत्तर रेलवे ने त्योहार के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए कल से भागलपुर और नई दिल्ली के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के दो सदस्यों को निहाल विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विशेष चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है और उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। त्योहार के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे कल से भागलपुर और नई दिल्ली के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी भागलपुर से कल सुबह 11 बजे रवाना होगी और 31 मार्च को सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली से भागलपुर के लिए रेलगाड़ी 31 मार्च को तड़के 4 बजे चलेगी। ये रेलगाड़ी सुल्तानगंज, जमालपुर, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, आरा, बक्सर, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर रुकेगी। उत्तर रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अपने पुराने सामान को बेचकर 603 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अर्जित कर रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी के अनुसार स्क्रैप की ये बिक्री देश की सभी क्षेत्रीय रेल इकाइयों में सर्वाधिक है। उत्तर रेलवे ने ये रिकॉर्ड सालाना बिक्री लक्ष्य 500 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री करके बनाया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के दो सदस्यों को निहाल विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी नाइजीरिया मूल के हैं। अपराध नियंत्रण शाखा ने इनके पास से 30 ग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला मादक पदार्थ एमडीएमए जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रूपये से अधिक आंकी गई है। दोनों विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर 7 साल पहले भारत आए थे और वीजा की अवधि पूरी होने के बाद भी भारत में रहकर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। सरकारी ई मार्केट केंद्र जीईएम पर चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 गुना है। एक रिपोर्ट।
आज नई दिल्ली में जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इससे जीईएम पोर्टल की अनूठी डिजिटल क्षमताओं और कार्यक्षमताओं का पता चलता है। इससे पुष्टि हुई है कि सार्वजनिक खरीद में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और बिना किसी बाधा के कारोबार होता है। उन्होंने कहा कि इस सकल कारोबार में लगभग 50% योगदान सेवाओं की खरीद का है। पिछले वित्त वर्ष में जीईएम पर सेवाओं की खरीद की तुलना में इस वर्ष 205% की वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन यानी वोकल फॉर लोकल, एक जिला एक उत्पाद स्टार्टअप रनवे जैसे प्रयासों से जीएम ने घरेलू कारोबारियों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस अवसर पर वाणिज्य मामलों के अपर सचिव अनंत स्वरूप भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विशेष चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़, सह प्रभारी डॉ अलका गुर्जर और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सामूहिक पूजन किया। श्री सचदेवा ने कहा कि देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी के सभी प्रत्याशी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा का कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब तक आम चुनाव की घोषणा के बाद शिकायती ऐप पर 79,000 से अधिक उल्लंघन के मामलों को दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर लिया गया है और इन शिकायतों में से 89% का 100 मिनट के भीतर समाधान निकाला गया। 58,500 से अधिक मिली शिकायतें अवैध होर्डिंग और बैनर से संबंधित थीं। 1400 से अधिक मिली शिकायतें धनराशि, उपहार और शराब वितरण से जुड़ी थीं। लगभग 3% शिकायतें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में हैं। 1000 शिकायतें निर्धारित चुनाव प्रचार के समय से अधिक प्रचार से संबंधित हैं। इस अवधि में वक्ताओं ने निर्धारित समय के बाद भी प्रचार जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण किया है। ये जनता द्वारा और जनता के लिए है। सरकार विभिन्न समुदायों के भीतर उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं की मानसिकता को बहुत बदल दिया है। एआई के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एआई बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को ये दी जाए तो इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सामग्री पर स्पष्ट वाटरमार्क होना चाहिए जिससे कोई भी गुमराह न हो।
कोई भी एआई जनरेटेड चीज है उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड। डीप फेक तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खेल, अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और विज्ञान से लेकर स्टार्टअप तक ये भारत का दशक है। श्री ठाकुर ने आज ये बात लखनऊ में विकसित भारत एम्बेसडर मीट अप कार्यक्रम में कही। उन्होंने कृषि के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी और कृषि तकनीकी स्टार्टअप की भूमिका की सराहना की। श्री ठाकुर ने उद्यमियों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही पहलों की भी चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। अंसारी का कल बांदा मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 63 वर्षीय अंसारी उत्तर प्रदेश में मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहे और वर्ष 2005 से उत्तर प्रदेश और पंजाब की जेल में थे। बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव उसके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया गया है और अब उसे अंतिम संस्कार के लिए गाजीपुर ले जाया गया है। 2 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीमें भी तैनात की गई हैं। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है कि लोगों को ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनमें दूरसंचार विभाग के नाम पर कॉल करने वाले धमकी दे रहे हैं कि उनके सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाएंगे या उनके मोबाइल नंबरों का किसी अवैध गतिविधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
दूरसंचार विभाग ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों से ठगने वाले व्हाट्सएप कॉल के बारे में लोगों को अवगत कराया है। विभाग ने एक बयान में कहा है कि साइबर अपराधी ऐसी कॉल के जरिए साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया कि उसके द्वारा ऐसी कॉल नहीं की जाती है और इससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और ऐसी कॉल आने पर कोई भी जानकारी साझा नहीं करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को संचार साथी www.sanchar.gov.in के पोर्टल पर किसी भी ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होने की स्थिति में साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने की सलाह दी है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज गुड फ्राइडे के दिन विश्वभर में गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। यीशु मसीह को इस दिन सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे के बाद रविवार को 31 मार्च को यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए थे, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह के बलिदान को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुड फ्राइडे को ईसा मसीह के विनीत बलिदान को स्मरण किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अनुकंपा और दूसरों को क्षमा करने की यीशु मसीह की सीख से प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रीमद् स्वामी स्मरणानंद जी महाराज भारत की आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूत थे। श्री मोदी ने स्वामी स्मरणानंद जी के देहावसान को व्यक्तिगत क्षति बताया है। एक ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले स्वामी आत्मस्थानंद जी का निधन और अब स्वामी स्मरणानंद जी का प्रयात मर्मार्थ करने वाला है। प्रधानमंत्री ने दोनों संतों को आधुनिक शिक्षा, कौशल और महिला सशक्तिकरण का प्रबल समर्थक बताया। देश के 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी में 6.7% की वृद्धि हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष फरवरी में कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, इस्पात, कच्चा तेल, विद्युत और रिफाइनरी उत्पादों में सकारात्मक वृद्धि हुई। ये 3 महीनों की सबसे अधिक वृद्धि है। सीमेंट उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी में 10.2% बढ़ा। कोयला उत्पादन में 11.6%, कच्चे तेल के उत्पादन में 7.9% और विद्युत उत्पादन में 6.3% की वृद्धि हुई। प्राकृतिक गैस का उत्पादन 11.3%, पेट्रोलियम रिफाइनरी का उत्पादन 2.6% और इस्पात निर्माण 8.4% बढ़ा। उर्वरक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.5% की गिरावट देखी गई। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में 4.9% और इस वर्ष जनवरी में 4.1% की वृद्धि हुई। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक अर्थात 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्योहार के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे कल से भागलपुर और नई दिल्ली के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को निहाल विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विशेष चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।